लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, सीरिया में युद्ध अपने 14वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इससे लाखों जिंदगियां व आजीविकाएं तबाह हुई हैं। सीरिया के अलेपो प्रांत में लड़ाई में तीव्र वृद्धि होने की खबरें हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने पश्चिमोत्तर सीरिया में हिंसा में अचानक आई तेजी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने युद्धरत पक्षों से टकराव पर तुरंत विराम लगाने और यूएन के तत्वाधान में राजनैतिक प्रक्रिया की ओर लौटने की अपील जारी की है। उधर इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में 13 महीने से अधिक समय पर जारी युद्ध से तबाह समुदायों पर बमबारी और टोही ड्रोन की उड़ानों के बिना एक दिन भी नहीं बीतता। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय आपदा राहत समन्वय एजेंसी ओचा ने मंगलवार 3 दिसंबर को बताया कि इसराइल ने गाजा में लोगों को अपने स्थानों से अन्यत्र जाने के लिए जो बेदखली आदेश जारी किए हैं, उनसे खान यूनिस में 2000 से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। गाजा में युद्ध के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख अजीत सुंघाए ने इसराइल की घेराबंदी के शिकार उत्तरी गाजा के इलाके का दौरा करके भूख के अत्यंत गंभीर स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। और लेबनान में हाल के युद्ध से विस्थापित हुए लोग इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान युद्ध विराम समझौता बुधवार 27 नवंबर सुबह लागू होने के साथ ही अपने घरों को लौटने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कर्मी युद्ध से उजड़े इन समुदायों को उनके अपने घरों को वापस लौटने पर सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
फिलिस्तीनी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख अजीत सुंघाई ने गाजा में लगभग एक सप्ताह तक हालात का जायजा लेने के बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान से वीडियो लिंक के जरिए जिनेवा में पत्रकारों को बताया कि गाजा में तबाही का स्तर लगातार बद से बदतर हो रहा है। स्थानीय बाजार बिखर गए हैं। अजीत सुंघाई ने इस बार भूख के अत्यंत गंभीर स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की।
They're desperately in need for basic necessities. I've never seen in the last 13 months such need for food, shelter.
अजीत सुंघाई कह रहे थे कि गाजा में इस समय भोजन, पानी और आश्रय की सख्त जरूरत है। महिलाएं और बच्चे कूड़े कचरे के ढेरों में खाने पीने की चीजें तलाश कर रहे थे। हर रोज लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि इन मौतों को पूरी तरह से टाला जा सकता है। गाजा के सभी लोगों की तरफ से ये गुहार नजर आई कि इस विनाश को तत्काल रोका जाए। फिलिस्तीनी क्षेत्र में यूएन मानवाधिकार प्रमुख अजीत सुंघाई के शब्द। उन्होंने कहा कि खाद्य अभाव इस हद तक भयावह कर देने वाला है जैसा कि 13 महीने के युद्ध के दौरान पहले कभी नहीं देखा गया। सार्वजनिक व्यवस्था ढह जाने के कारण संकट और भी गहरा हो गया है और बहुत कम संसाधनों के लिए लूटपाट व हिंसा की घटनाएं बार बार हो रही हैं। इस बीच विभिन्न यूएन एजेंसियों ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान युद्ध विराम का स्वागत करते हुए इसे लाखों लोगों के लिए विशाल राहत करार दिया है। जिनेवा स्थित यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ओएचसीएचआर के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने तमाम पक्षों से लेबनान युद्ध विराम का सम्मान किए जाने और किसी भी तरह के विवादों को इसी ढांचे के तहत हल करने का आग्रह किया है।
भूमध्य सागर की ओर जाने वाली मार्गों पर जाने वाली महिला शरणार्थी और प्रवासी लगातार खबरें दे रही हैं कि उन्हें यौन हिंसा और शोषण, दासिता और मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है। मानवीय सहायता कर्मियों का अनुमान है कि उनमें से 90% महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। दुनिया भर के अनेक देशों में विभिन्न संकटों और समस्या के कारण अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर 6 करोड़ से अधिक महिलाएं और लड़कियां लिंग आधारित हिंसा के उच्च जोखिम का सामना करती हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR का कहना है कि आंकड़ों से मालूम होता है कि वर्ष 2023 की तुलना में इस वर्ष टकराव से संबंधित यौन हिंसा के मामलों में 50% की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है और सत्यापित मामलों की 95% संख्या महिलाओं व लड़कियों की है। UNHCR की प्रवक्ता शाविया मंटू का कहना है कि जबरन विस्थापन और टकराव व युद्ध से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध होने वाली लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए शुरुआती और प्रभावशाली उपाय जीवन रक्षक साबित होते हैं, मगर इन उपायों के लिए पर्याप्त धन की कमी है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अभियोजक करीम खान ने म्यांमार के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और कार्यवाहक राष्ट्रपति वरिष्ठ जनरल मीन आंग हलाइंग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के लिए आवेदन दायर किया है, जिसमें उन पर रोहिंग्या आबादी को निशाना बनाकर मानवता के खिलाफ अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
यह कदम म्यांमार की सेना द्वारा राखीन प्रांत में अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंग्या समुदाय को निशाना बनाकर वर्ष 2016 और 2017 में की गई हिंसा की ICC द्वारा व्यापक जांच करने के बाद उठाया गया है। ICC के अभियोक्ता करीम खान ने एक बयान में बताया कि उनके कार्यालय के पास ये मानने के उचित आधार हैं कि वरिष्ठ जनरल और कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग म्यांमार और आंशिक रूप से बांग्लादेश में रोहिंग्या के निर्वासन एवं उत्पीड़न के अपराधों के लिए जिम्मेदारी वहन करते हैं। उस समय के घटनाक्रमों में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या लोगों को उनके घरों से भागने और बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर करने के अलावा अत्याचारों की अनगिनत कहानियां हैं। उनमें लगभग 10,000 रोहिंग्या पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और नवजात शिशुओं की व्यवस्थित रूप से हत्याएं किया जाना शामिल है। ICC के अभियोजक करीम खान ने बताया कि यह म्यांमार सरकार के किसी उच्च स्तरीय अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए पहला आवेदन है तथा आगे और भी आवेदन दाखिल किए जाएंगे। अभियोक्ता करीम खान द्वारा दाखिल किया गया ये आवेदन व्यापक साक्ष्यों पर आधारित है, जिनमें देश के भीतर मौजूद गवाहों की गवाही, दस्तावेजी सबूत और वैज्ञानिक तथा दृश्य सामग्री शामिल है, जिसे प्रांतों, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन से एकत्र किया गया है। उन्होंने कहा कि हम ये दिखाएंगे कि रोहिंग्या लोगों को भुलाया नहीं गया है और ये कि वे दुनिया भर के सभी लोगों की तरह कानून का संरक्षण पाने के हकदार हैं।
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि अफगानिस्तान में पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, यातना व प्रेस आजादी पर पाबंदी समेत अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। उधर मादक पदार्थों एवं अपराध नियंत्रण पर UN कार्यालय ने अफीम की खेती के नवीनतम आंकड़े 6 नवम्बर को जारी किए, जिनमें पुष्टि की गई कि 2024 में अफीम की खेती में साल दर साल अनुमानतः 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तालिबान द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद 12,800 हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती किए जाने का अनुमान है, लेकिन फिर भी नवीनतम आंकड़े प्रतिबंध से पहले के स्तर से काफी नीचे हैं। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रभु दिल
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। इटली के कतानिया शहर स्थित सेंट पॉल्स थियोलॉजिकल स्टडीज धर्मतत्व वैज्ञानिक समुदाय के सदस्यों का शुक्रवार को वेटिकन में अभिवादन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें अपने संस्थापक के आदर्शों पर एक साथ चलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने सदस्यों से कहा कि संत पॉल ईश शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान को द्वितीय वेटिकन महासभा का पहला फल माना जा सकता है। इसका जन्म 1969 में हुआ था, जब पूर्वी सिसिली के धर्म प्रांत ने ईश शास्त्री प्रशिक्षण का एकमात्र स्थान स्थापित करने का निर्णय लिया था और जो समय के साथ पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मी विश्वासियों के लिए अध्ययन हेतु उपयोगी सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा, मैं आपको इस पद पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, एक साथ चलना जारी रखें, एक व्यापक संगठन की पेशकश करें जो कि कलीसिया और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। संत पापा ने कहा कि कतानिया शहर स्थित सेंट पॉल्स थियोलॉजिकल स्टडीज पालेर्मो की थियोलॉजिकल फैकल्टी के साथ संयुक्त होकर अन्य कलीसियाओं के लिए भी सहभागिता का एक उत्तम आदर्श तैयार करता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में जब हम सहभागिता की बात करते हैं तो हमें प्रशिक्षण संरचनाओं के बीच संबंध को शामिल करना चाहिए जो धार्मिक प्रतिबिंब से अनुप्राणित सहभागिता, भागीदारी और मिशन की प्रयोगशालाएं बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म तत्व विज्ञान संबंधी अध्ययन का मिशन उस क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकता जिसमें वह स्थित है। इस प्रकार पहले से ही आप अपने अकादमिक शैक्षणिक पथ पर अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते जो आपको ईश प्रदत्त उपहारों की विविधता और ख्रिस्तीय सुसमाचार प्रचार के नए तरीकों की खोज में एक दूसरे के समीप रखता है। उन्होंने कहा कि यह भी प्रज्ञा की एक निशानी है, यह सहजिम्मेदारी की एक शैली है जिसका आप आज प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिसिली द्वीप अद्भुत प्राकृतिक और कलात्मक सुंदरता की भूमि है। दुर्भाग्यवश इस पर माफिया की सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार का खतरा बना हुआ है, जबकि सिसिली को ऐसे पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता है जो भविष्य को आशा के साथ देखना जानते हों और नई पीढ़ियों को सामान्य भलाई की देखभाल करने, प्राचीन और नई तरह की गरीबियों को मिटाने हेतु स्वतंत्र और पारदर्शी होने के लिए प्रशिक्षित करना जानते हों। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को वेटिकन में ब्राजील और यूरोप के अनेक शहरों से संत पेत्रुस और संत पॉलुस की समाधियों के दर्शन हेतु रोम आई पवित्र आत्मा के दूत नामक कार्मेल मठ की धर्म बहनों का अभिवादन कर उनकी उपस्थिति को अर्थ गर्भित निरूपित किया। संत पापा ने कहा कि 24 दिसंबर को रोम के संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार खुलने के साथ ही पवित्र जयंती वर्ष 2025 शुरू होगा, इसलिए इसकी पूर्व संध्या आपका रोम आगमन और आपकी यहां उपस्थिति और अधिक अर्थ गर्भित हो जाती है। उन्होंने कहा, इस अर्थ में हम सुसमाचार के उस अंश के साथ पूर्ण सामंजस्य पाते हैं जो हमें संत लुकस रचित सुसमाचार के अनुसार येसु को नाजरेत के सभागृह में दिखाता है और जिसने आपके संस्थान की नींव को प्रेरित किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर विचरता है जिसने मुझे सुसमाचार का शुभ संदेश सुनाने और प्रभु की कृपा का वर्ष घोषित करने के लिए भेजा है। धर्म बहनों से संत पापा ने कहा कि उनकी रोम यात्रा हमें सुसमाचार प्रचार की सेवा और ईश्वर के वचन के प्रचार प्रसार के प्रति दैनिक प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। उन्होंने कहा, वास्तव में संपूर्ण विश्व में सुसमाचार की घोषणा करना सभी ख्रिस्तानुयायियों का मिशन है। वेटिकन स्थित परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय में गुरुवार को ओपेरा पोंटिफिशिया के नए अध्यक्षों की प्रस्तावना की गई। इसके नए निर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय निदेशक येसु धर्म समाज के जेसुइट पुरोहित फादर क्रिस्टोबल फोंस क्लारो होंगे। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर कहा कि ओपेरा पोंटिफिशिया का मिशन कलीसिया के मिशन को अनवरत नवीकृत करते रहना है। नए अध्यक्षों की प्रस्तावना करते हुए येसु धर्म समाज के फादर फ्रीडरिक फोरनोस ने कहा, संचार के नए माध्यमों के माध्यम से और हृदय के अंतरंग परिवर्तन से शुरू कर प्रार्थना की भाषाओं को नवीकृत करना कलीसिया के मिशन का आधार है, क्योंकि इसी में समस्त अच्छाइयों के साथ साथ वह बुराई भी समाहित है जो हमारे समाज में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि ये वही आशाएं और उद्देश्य हैं जिन पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रार्थना नेटवर्क के नए बोर्ड का काम उन्मुख रहेगा, जिसका उदय 2014 में प्रार्थना प्रेरिताई की पुनः स्थापना से हुआ था और जो 2018 में संत पापा द्वारा ओपेरा पोंटिफिशिया यानी कि पोंटिफिकल कार्य के रूप में परिणित हुआ है। ओपेरा पोंटिफिशिया द्वारा इस वर्ष आरंभ पहलों में उन्होंने क्लिक टू प्रे तथा वीडियो डेल पापा का स्मरण दिलाया जो 23 भाषाओं में प्रतिमाह इंटरनेट पर उपलब्ध रहते हैं। प्रार्थना नेटवर्क के निदेशक मंडल के सदस्य फादर फेडेरिको लोम्बार्दी ने अपने संक्षिप्त भाषण में ओपेरा पोंटिफिशिया की गतिविधियों को डिजिटल सहित नए रूपों में फिर से लॉन्च करने का उल्लेख किया ताकि उन्हें अधिक सुलभ और युवा लोगों के करीब बनाया जा सके। यूरोप में सुरक्षा संबंधी संगठन OSCE ओशे की 31वीं वार्षिक मंत्री स्तरीय परिषद को संबोधित करते हुए राज्यों और अन्य संगठनों के साथ संबंधों के लिए वैटिकन सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल गालाघर ने सदस्य देशों से मतभेदों से ऊपर उठने और हेलसिंकी की भावना में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का आग्रह किया। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन ओशे 2025 में अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। महाधर्मादेश गालाघर ने सदस्य देशों के बीच बढ़ते विभाजन पर परम धर्म पीठ की गहन चिंता व्यक्त की और कहा कि यह संगठन की जड़ों को अस्पष्ट कर रहा है और बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच इसके दैनिक काम को प्रभावित कर रहा है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि संगठन को बचाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब संवाद को बढ़ाना और तनावों को कम करना आवश्यक हो गया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।